जिहाद फी सबील अल्लाह से पहले ट्रेनिंग के मरहले आते हैं, वो आगे जाके देखेंगे, लेकिन हम अपने आप को चेक करें। हर एक खुद से पूछे, मैं कितनी सीरियस हूँ। चंद सवाल मैं भी अपने आप से लिखूँ, आप भी लिखिए। कितने लोग मानते हैं कि ये कुरान का सीखना और यहाँ आना और पढ़ना उनका जिहाद है, या वो अल्लाह के लिए करते हैं? मेरा ख्याल हम में से हर एक हाथ उठाएगा। मैं तो उठाऊंगी, दोनों हाथ उठाने को तैयार हूँ। कहें तो 1 मिनट के लिए खड़े होकर बैठ जाऊँ कि वल्लाह ही आपके लिए ये आना, यहाँ बैठना, सीखना, सिखाना, ये ओनली ओनली फॉर दिस सेक ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला, कि अल्लाह मेरी इन बहनों और इन साथियों के दिलों में वो बात डाल दे जो इनको ज़िंदगी का मकसद सिखाए। इसमें कितनी संजीदा हूँ, क्या ये बतीयन वाली कैफियत इसमें नहीं? आप में से हर एक लिखे खुद, ऑनलाइन भी और ऑन साइट भी। यहाँ वाले दिखते हैं, ऑनलाइन वाले दिखते कोई नहीं। क्लास के लिए कितनी खुशी से आई, कितनी तैयारी की, कितने बजे पहुंची मैं आज यहाँ, मुझे कितने बजे पहुंचना चाहिए था, देर हुई तो क्यों हुई, सुस्ती हुई तो क्यों हुई, जल्दी जाती हूँ तो क्यों जाती हूँ। वल्लाही मैं बिल्कुल अपने दिल का दुख बताऊंगी आपको, दुश्मन ये नहीं देखता कि फौज पूरी कब हुई है, वो सिर्फ होल्स देखता है कि यहाँ कोई नहीं खड़ा, पहुँच दो। आप इमेजिनेशन में लाइए, क्लास का वक्त क्या है हमारा, ऑनलाइन के थ्रू बात कर देती हूँ, आप सबका तो आपको पता ही है, बल्कि आपका करती हूँ ताकि शायद गलती किसी के दिल में है तो दूर हो जाए। कितने बजे क्लास शुरू होती है, सब मिलके बोले? 9:45 स्टार्टिंग टाइम है, राइट? आपकी रोल कॉल का टाइम है, ठीक है? और उससे 5-6 मिनट पहले पहुंचेंगे तो लगाएंगे ना रोल कॉल। क्लास का एंडिंग टाइम क्या है? 2:15 है। सबको यकीन है, पूरा यकीन है। अब आप बताइए मुझे, आपके बच्चों का स्कूल कितने बजे लगता है? 8:45, ठीक है? बच्चों को स्कूल में कितने बजे होना चाहिए? आपसे कितना पहले? पूरा 1 घंटा पहले। पॉसिबल हो जाता है ना? यहाँ मैंने देखे 8 बजे, आमतौर पे तो 7 बजे स्कूल जाते हैं बच्चे, पहुँचते हैं ना बच्चे 8:45 पे। जब बच्चे पहुँच सकते हैं तो हम 9:45 पे यहाँ क्यों नहीं पहुँच सकते? मैंने आज आपसे बात ही नहीं की शुरू में, मैंने सिर्फ खुतबा पढ़ा कि ये मेरा फ़र्ज़ है। इस वक्त जो माशाल्लाह आपका क्लासरूम दिख रहा है ना, ये 9:45 पे ऐसा नहीं था। अब आप सोचिए, ये जंग का टाइम है, दुश्मन को बुला लिया लीडर ने कि भाई आओ तुम भी फौजे ले आओ, हम भी ले आते हैं। 9:45 से लेके 2:15 के बीच में एक जंग होगी, एक मार्का होगा, जो जिस लम्हे जीत गया वो वन कर जाएगा। सोचिए जरा आप, तो दुश्मन क्या कहेगा, आने का इंतजार कर लो, वो तो आपकी जंग कब जीत के जाएगा, आप कब हार चुके होंगे, आप 9:45 पे जंग हार चुके होंगे अगर दुश्मन पूरा सामने आ गया। खुद से पूछे, मैं नहीं कभी भी आपसे पूछ सकती, कोई नहीं पूछ सकता, कोई किसी से, खास तौर पे ये दीन का काम तो नहीं करा सकता, मैं तो गिव अप करती हूँ। सिर्फ एक ही चीज़ आपसे कराएगी, फी सबील अल्लाह, अल्लाह के रास्ते। आपकी फ़्लाइट हो 9:45 पे, कितने बजे एयरपोर्ट पहुँचेंगे और जहाज़ में बैठेंगे? आप किसी को लेने गए हैं और वो 9:45 पे बाहर खड़ा है, आप क्या गोल लेके जाएंगे? देखिए, ये मेरा और आपका टेस्ट है, अगर इसमें संजीदा नहीं है, अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, कल जंग भी लग जाएगी तो हम सोते रह जाएंगे। उठेंगे इसलिए कि मेरी जान बच जाए, मेरे बच्चे बच जाएं, उनको लेके किसी रेस्क्यू में पहुंच जाओ। ऐसी उम्मत नहीं होती थी नबी की। हमेशा याद रखिए कि इस रास्ते में निकलने में खैर ही खैर है। वमन युकातिल फी सबील अल्लाह, जो अल्लाह की रास्ते में निकलेगा, लड़ाई करेगा, दो में से एक ही चीज़ होगी, फयुक्तल, ख्वा मारा जाएगा, हार गए, लूजर्स, लोग कहेंगे डिफीट हो गई, मुसलमान हार गए, या फिर वो अगले या गालिब आ जाएगा। देखिए, दो ही पॉसिबल वेज है ना। इवन अगर ओहद में तीसरी भी फेज आई तो वो भी तो शुरू में जीत थी, बाद में हार थी, ड्रॉ तो नहीं हुआ ना मैच, उसके इफेक्ट तो, कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने पड़े मुसलमानों को अगले सालों में। लेकिन मुसलमान के लिए खुशखबरी है, तुम जीतो तुम हारो, फसौफनोती ही अजर नजीमा, हम इसे दोनों हालतों में बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे। देखिए, दूसरों की जंग खत्म होती है तो रिजल्ट निकलता है, ऐसे है ना। अल्लाह के रास्ते में निकले तो रिजल्ट फौरन निकल गया। जितने निकलने वाले वो पास, कामयाब, टेस्ट हो कि ना हो, असाइनमेंट वापस मिले कि ना मिले, चेक्ड हो गई, कुछ भी हो गई, इसको छोड़ दीजिए, ये देख लीजिए कि अल्लाह ने आपको अजर दे दिया। इससे भी कोई बड़ा सौदा होगा। देखिए ना, मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ कि एक शख्स है, वो 7 घंटे की जॉब करता है, चलिए $5 के हिसाब से उस एंड ऑफ द डे 35 मिलने हैं। ऐसे ही होता है ना, जिसको रोज़ के रोज़ मिलते हो, कोई भी दिहाड़ीदार है, कोई भी काम करने ला गया, कब देते हैं पैसे मासी को? 5 घंटे के लिए मासी को बुलाया, 7 के लिए बुला लिया मिसाल है, तो आप उसको जाते हुए देते हैं ना कि ये तुमने आज 7 घंटे काम किए, ये तुम्हारे $35 हैं। अल्लाह क्या करता है? आते ही दे देता है। तुम निकल आए हो, मैं नहीं उधार करता, और अल्लाह की कसम अल्लाह उधार नहीं करता। अल्लाह तो आपसे कमिट भी कर लेगा ना कि $5 दूंगा, अल्लाह आपको 5,000 से भी ज़्यादा दे देता है। हमें लेना ही नहीं आता। जहाँ अजर मिलने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, वहाँ हम शैतान की बातों में आ चुके होते हैं। इसलिए अब अगली आयतों में इंसान को बहुत खूबसूरत तरीके से सिखाया जा रहा है कि देखो, तुम्हें अगर ये लग रहा है ना कि अभी ज़रूरत कोई नहीं अल्लाह को मेरी, तो आओ ज़रा तुम्हें आंखें खोल के दिखाएं कि कितने लोग हैं जो बिलक रहे हैं और सिसक रहे हैं। आयत 75 देखिएगा, वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, और तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की राह में किताल करते ही कोई नहीं? ऐसा मोहब्बत भरा गिला, जैसे आप किसी से कहे क्या बात है आप मिलने ही नहीं आते, क्या बात है आप तो फ़ोन ही नहीं करती, ये क्या स्टाइल होता है, गुस्से का होता है? इसमें मोहब्बत झलक रही है। तुम्हें क्या हो गया है? वल मुस्तदफीन मिन अर्रिजाल वन्निसाइ वल विल्दान, और इन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर, कौन से? जो मगलूब बना लिए गए। मुस्तदफ से द्वाद आइनफा जोफ दोफ, यानी जो मगलूब बना लिए गए, जिनको किसी जगह बांध दिया गया, उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहे हैं, उनके पास तकलीफें आ रही हैं, तो वो क्या कहते हैं? अल्लज़ीन यकूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रिया, जो ये दुआएं करते हैं कि हमारे रब, हमारे परवरदिगार, हमें इस बस्ती से निकाल। कौन सी बस्ती? अज़्ज़ालिम अहलुहा, जिसके रहने वाले वहाँ ज़ालिम हैं। यानी ये वो पिसे हुए लोग, दबे हुए लोग, जो किसी जगह फंसे हैं और दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें इधर से निकाल। वजअलना मिन लदुनका वलिया, और हमारे पास अपनी तरफ से कोई हिमायती भेज दे। वजअलना मिन लदुनका नसीरा, और हमें अपने ख़ास फजल से कोई मददगार दे दे। बात तो है मक्का की, मदीना में आके सुस्त क्यों हो गए हो? घर अपने बनने लग गए हैं, ज़रा सुख चैन की बांसुरी बसने लगी। वो मक्का के दिन भूल गए कि जब तुम नमाज भी नहीं पढ़ सकते थे। वो मक्का के रास्ते के कांटे भूल गए। वो मक्का के अंदर ओजड़ियों का तुम्हारी पुश्तों पे गिराया जाना भूल गया तुम्हें, और तुम आज इतने ठंडे होके बैठ गए हो कि तुम्हें वो फंसे हुए बाकी लोग याद नहीं आ रहे। कुछ लोग फंस गए थे ना, पीछे रह जाते थे। हर जंग के अंदर ऐसे ही होता है, आखिर में कुछ लोग होते हैं मज़लूम हैं, करना चाहते थे, हिजरत कर नहीं पा रहे थे। बच्चे थे, औरतें थे, हैंडीकैप्स थी, कुछ के मर्द चले गए, औरतें पीछे थी। अब ये तरह तरह से बेचारे परेशानियां करते थे, इनके ऊपर जुल्म था, तकलीफें थी, तो अल्लाह सुभान व तआला कहते हैं कि तुम्हें इनकी पुकारें नहीं मिलती। ये तो कल की बातें थीं, आज भी कोई ऐसे हैं लोग? देखिए, यहाँ दो तरह से समझ लें, अगर किताल को जिहाद के सेंस में समझना है तो पूरी दुनिया से आवाज़ें आ रही हैं जुल्म और बर्बरियत की। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें इनकी आहो बुकाक तुम्हें आवाज़ें नहीं आती, इनकी पुकारें, इनके जुल्म तुम्हें नहीं? तुम अपने घरों के फन में मत करो, सिर्फ खबरें सुनने, सिर्फ डोनेशन कुछ भेज दो कभी जब कोई जोश आए तो। क्या हो गया? हालांकि आप देखिए कि कितने मुख्तलिफ महाज कायम है इस वक्त दुनिया में दीन का काम करने के। अगर आप इसको जिहाद से, किताल से हटकर ज़रा दुनिया में इस्लाम के गलबे की बात कर लें, तो कितने ही लोग हैं जो अभी तक कुफर की अंधेरियों में फंसे हुए हैं, जिनको अल्लाह का भी नहीं पता। कहीं गाड़ी में बैठ जाए ना ट्रैफिक में, और लोग आगे से आते जाते हैं, तो आपको पता है कि रंग रंग के लोग होते हैं बाहर, तो मैं अक्सर यही सोचती हूँ उनको देखते हुए, हाय इसको नहीं पता कि मेरा रब कौन है। ये बस को पकड़ने के लिए भाग रही है, भाग रही है, इसको जन्नत का पकड़ना नहीं पता। जब तक दीन गालिब नहीं करेंगे, इस्लाम गालिब नहीं होगा। जहाँ कुफर है वहाँ इस्लाम कैसे आएगा? अगर हम लोगों में इस किताब को आम कर दें तो आप बताइए क्या लोग इस्लाम दुश्मन रहें? नबी सल्लम का कारनामा क्या था कि आपने काफिर को नहीं मारा, कुफर को मारा। कुफर ख़त्म करना है, और कुफर तलवार से नहीं, कलम से ख़त्म होगा। और मुझे और आपको तो अल्लाह ने रास्ते भी दे दिए। ये कुरान मेरे और आपके हाथ में है। घर घर जाओ, बात करो, इस इस्लाम की दावत दो। हम इतने सुस्त और ठंडे क्यों हो जाते हैं? आज हमारे बच्चों के दिल में कितनी कुतड़प है कि हम इस्लाम का गलबा रखें। एक आर्टिकल चंद दिन पहले मुझे किसी ने भेजा, बहुत ही अच्छा लगा, आपके साथ शेयर करती हूँ। आदत नहीं है पढ़ के सुनाने की, लेकिन पढ़ के सुनाती हूँ। और आप और मैं इसको सुनते वक्त इसी चीज़ को देख लें कि अल्लाह के रास्ते में निकलना और उसके ऊपर चलना चलाना हमारे लिए कितना आम है। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे अपने दिल में कोई नहीं तड़प होती ना कि दूसरों को जहन्नुम से बचाना है, उनको आग किसे निकालना है, तो यकीन कीजिए कि हमारे बच्चों के भी दिलों में नहीं होती। बल्कि इसको सुनने में खोल रही हूँ इतनी देर में जो बात हो रही है उसके ऊपर तवज्जो करके देखें कि आज अगर आप और मैं, हम सब अपने अपने घरों के ऊपर गौर करें और पूछें उनसे कि बच्चों ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये पढ़ के सुनाती, उसका नाम है अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। और आप सब ने आंखें झुका के तज़किए के तौर पे सुनना है और दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी ही तड़प दे दे। जुमे को नमाज असर के बाद बाप बेटे का मामूल था कि वो लोगों को दीन की दावत देने के लिए अपने घर से निकलते, बाजार के बस में सड़क किनारे खड़े हो जाते, आते जाते लोगों में इस्लामी लिटरेचर तकसीम करते। क्या कहेंगे आप इसको? दावा, ठीक है ना? बाप मुकामी मस्जिद में खतीब हैं, यानी खुतबा देते हैं। इनका 11 साल बेटा, अब ये 11 साल के नीचे अब सब अपने अपने बेटों के नाम और उम्रें लिख लें, चाहे अभी वो आपकी गोद में, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, वो बड़ा होगा। गुज़श्ता कई सालों से मौसम की शिद्दत की परवाह किए बग़ैर अपने वालिद के साथ जाता था। एम्स्टर्डम हॉलैंड का दारुल हुकूमत है, यूरोप का ये छोटा सा मुल्क है, बेहद खूबसूरत। यहाँ बेहदो हिसाब फूल पैदा होते हैं, बारिशें कसरत से होती हैं, इसलिए यहाँ हर तरफ हरियाली नज़र आती है। दूध की पैदावार और इसकी प्रोडक्ट के एतबार से ये मुल्क बड़ा मशहूर है। कितनी ही मशहूर ज़माना कंपनियाँ यहाँ से खुश्क दूध दुनिया भर में सप्लाई करती हैं। अब एक रोज़ क्या हुआ, एक रोज़ मौसम बड़ा ही ख़राब था। अभी मैं इसकी सलाह करूँगी कि मौसम ख़राब नहीं होता, यानी वर्स था। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही थी, यख बस्ता सर्दी के साथ वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही थी। जुमे का दिन था और मामूल के मुताबिक बाप बेटे को लिटरेचर तकसीम करना था। वालिद थोड़ी ही देर पहले मस्जिद से घर पहुंचे थे, इन्हें कदरे थकावट भी थी। बेटे ने खूब गर्म कपड़े पहने और अपने वालिद से कहने लगा, अब्बा जान चलिए, लिटरेचर तकसीम करने का वक्त हो चुका है। कितने साल का बच्चा? 11 का, तैयार हो चुका है, बती नहीं है, लयुबत्ती अन्ना वाली कैफियत नहीं है। अब कह रहे कि अब्बा चलो, मगर बेटे आज तो मौसम बड़ा ख़राब है, सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। मैं तो तैयार हो गया हूँ, बारिश हो रही है तो क्या हुआ अब्बा जान, फिर क्या है, यहाँ तो बारिश का होना मामूल की बात है। ये कौन हिम्मत दिला रहा है बच्चा? बेटे ने जवाब दिया। बाप कहता है कि बेटे मौसम का तेवर आज हमसे ये कह रहा है कि आज हम घर पर ही रहें। वालिद ने जवाब दिया, अब्बा जान आप तो खूब जानते हैं कि कितने ही लोग जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। ये जुमला लिख ले, अब्बा जान आप तो खूब जानते हैं कितने ही लोग हैं जो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, हमें इनको बचाना है, इन्हें जन्नत का रास्ता दिखाना है। कौन सा रास्ता? सबीलुल जन्ना दिखाना है, रोड टू जन्ना, मैप टू जन्ना। हाँ, आपको तो खूब मालूम है कि जन्नत का रास्ता नामी किताब पढ़कर कितने लोग राह रास्त पर आ गए। अब वालिद बोलते हैं, बेटे आज मेरा इस मौसम में बाहर जाने का कतन इरादा नहीं है, किसी और दिन प्रोग्राम बना लेंगे। उधर मौजूद था ना, ना जाते। लेकिन बेटा नहीं मान रहा, बेटा अब्बा जान क्या ऐसा हो सकता है कि आज मैं अकेला ही इन किताबों को तकसीम कर रहा हूँ? क्या आप बैठे, मैं जाता हूँ। बेटे ने इजाज़त तलब निगाहों से अपने बाप की तरफ देखा। वाले थोड़ी देर तरद्दुद का शिकार हुए, फिर कहने लगे, मेरे ख्याल में तुम्हारे अकेले निकलने और किताबें देने और जन्नत का रास्ता, यानी जो उसने किताब बांटनी थी उसका नाम था रोड टू पैराडाइज, इस किताब को ले जाकर बांटने में कोई हर्ज नहीं। अल्लाह का नाम लेकर तुम बेशक आज अकेले ही चले जाओ। पहले सोचिए, हम होते तो भेजते, हम खुद शायद कहते चले जाते, बच्चे तुम रो, ठंड ना लग जाए। कितना हमें फिक्र अपने बच्चों का, और होना भी चाहिए, लेकिन इतना फिक्र ना करें खुदा की कसम कि वो खुद को ही सबसे अहम समझने लग जाए। कहा, बेटा तुम जाओ। और किस लिए भेज रहे हैं? अविन फिरू फी सबील अल्लाह, अल्लाह के रास्ते में बच्चा जा रहा है। खैर, कहा तुम अकेले चले जाओ और लोगों में किताबें तकसीम करो। वालिद ने बेटे को किताबें पकड़ाई और उसे फी अमानिल्लाह कहकर अलविदा कह दिया। इस बात को जहन में रखें कि हमारे इस नन्हे दाई की उम्र सिर्फ 11 साल है। इसे बचपन ही से इस्लाम से शदीद मोहब्बत है और वो नहायत शौक से दीन के कामों में पेश पेश रहता है। नन्ना दाई घर से निकलता है, इसका रुख बाजार की तरफ है जहाँ वो काफी अरसे से लिटरेचर तकसीम करता चला आ रहा है। अब वो बाजार में अपनी मखसूस जगह पर खड़ा है और अपनी मुस्कुराहट से, नोट कीजिए, सिर्फ किताबें नहीं बांट रहा, मुस्कुराहटें भी बांट रहा है, क्योंकि दावत के लिए स्माइल लाजमी है। लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, इनको सलाम करता है, इनको रोकता है, इनसे बातचीत करता है, मुस्कुराते हुए इनसे कहता है, देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका रब आपसे शदीद मोहब्बत करता है। फिर वो उनको वो किताब पेश करता है, इनसे कहता है, जनाब ये बिल्कुल फ्री है, ये आपके लिए है। इनमें से कुछ लोग लड़के से किताब लेते हैं, कुछ शाने उचका कर आगे निकल जाते हैं। वो कहते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं, हमें तो सिर्फ नाते पढ़ने वाला चाहिए, हमें दर्स नहीं दिलवाना, सॉरी। अल्लाह अकबर। कुछ किताबें तकसीम करने के बाद इसका रुख करीबी मोहल्ले की तरफ से, वो बाज़ घरों के दरवाज़ों पर दस्तक देता है। अगर कोई बाहर निकलता है तो मुस्कुराते हुए इस किताब का तोहफा पेश करता है, कोई कबूल कर लेता है, कोई इनकार कर देता है, मगर वो इन चीज़ों से बेपरवाह। ये नोट कीजिए, तारीफ और तनकीद से बेनियाज सिर्फ वही है जो मुजाहिद फी सबील अल्लाह। मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, मुझे किसी से क्या लेना है, अपने मिशन में लगा हुआ है। किताबें तकसीम करते हुए कमोबेश 2 घंटे गुजर चुके हैं। हमारा बच्चा होता सारी एक ही दुकान पे छोड़ के आ जाता, ये बांट देना तुम तो। हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, जान चुड़ाने के लिए हम कहते बांट दी हैं चीज़ें, कहीं ऐसी जगह फ्लायर छोड़ाएंगे जहाँ सारे ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन तड़प थी ना कि सही जगह पे पहुंचे, सब दी। अब इसके हाथों में आखिरी किताब रह गई, सब गई, सिर्फ एक किताब रह गई। अब वो इस सोच में था कि ये आखिरी किताब किसे दी जाए। देखिए, यहाँ से आप उस बच्चे की अर्ज फील करें कि वो सिर्फ रस्मी तौर पे नहीं निकला दीन का काम करने, तड़प कह के एक एक चीज का हक अदा हो जाए। अब किसको दूं, और इंजॉय कर रहा है ना, जान छुड़ानी होती तो किसी को भी देता। खैर, इसने गली में आने जाने वाले कई लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और इन्हें किताब देने की पेशकश की, मगर उन्होंने थैंक यू कहकर इनकार कर दिया और आगे चल दिए। अब यहाँ भी एक छोटा सा नुक्ता है कि जब लोगों ने उसकी किताब लेने से इनकार किया होगा तो उसको दुख हुआ होगा ना, लेकिन ये किताब किसी और का नसीब थी। अभी आप देखेंगे, बस दफ़ा कोई आपकी कदर नहीं करता तो समझ लीजिए कि उस वक्त कोई और कदरदान बैठा है जिसको आपकी ज़रूरत है। तो कभी नेमतों की ना शुक्री ना करें, अल्लाह अपॉर्चुनिटीज देता है लेकिन अवेल ना करें तो अल्लाह ताला कहता है, जाओ तुम छूटे। लोगों ने किताब ना ली, इसका दिल टूटा, कोई और होता तो डिप्रेशन में जाता, इसने कहा नहीं मैं जाता हूँ। एक जगह जहाँ सारे घर एक ही डिज़ाइन के बने हुए थे, वो इनमें से घर का इंतखाब करता है और इसके दरवाजे पर जाकर घंटी बजाता है। किसी ने जवाब न दिया, इसने बार बार घंटी बजाई मगर अंदर मुकम्मल खामोशी थी। न जाने इसे क्या हुआ, ये इसके तरीक़ेकार के खिलाफ था कि वो किसी के दरवाजे को इस तरह बजाए, यानी उसकी आदत नहीं थी कि लोगों के दरवाजे पीटे, मगर आज इसने इस दरवाजे को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। जोर से कहा, कोई अंदर है तो दरवाजा खोलो। अंदर बदस्तूर मुकम्मल खामोशी थी। वो मायूस होने लगा, इसने कुछ सोचा और आखिरी बार अपनी उंगली घंटी पर रख दी। घंटी बजती रही बजती रही, आखिरकार इसे अंदर से कदमों की चाप सुनाई देने लगी। इसके दिल की हरकत तेज होने लगी, यानी डर था ना कि हो सकता है कि आगे से कोई डांट ही दे कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन इसको नहीं पता कि ये सब क्यों कर रहा है, किसी की हिदायत बुला रही थी। खैर, चंद लम्हों बाद आहिस्तगी से दरवाजा खुलता है। एक बूढ़ी खातून चेहरे पर शदीद रंजो गम के आसार लिए सामने खड़ी थी। कहने लगी, हाँ मेरे बेटे, बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। नन्हे दाई ने मुस्कुराते हुए कहा, निहायत ही मोअज़्ज़ज़ खातून, अगर आज मैंने आपको बेवक्त तंग किया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, और अगर मैंने इस वक्त आपको इस तरह से सताया तो आप मुझको माफ़ कर दीजिए, मैं इस तरह से अमूमन करता नहीं हूँ, और इसी तरह से अगर मैंने इस वक्त किया तो आपको पूरा हक है कि आप मुझे डांट लें। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, तुम बताओ क्या बात है। फिर उसके बाद ये बच्चा उस औरत से मुखातिब है, कहने लगा कि अम्मा जान, आपको पता है कि आपका रब आपसे कितनी मोहब्बत करता है, आपका रब आपके लिए जन्नत बना के बैठा हुआ है, आप उसको कैसे पा सकती हैं। अगर आप चाहें तो ये किताब है जो आपकी मदद करेगी, और इस तरह स्माइल के साथ उसने उस बूढ़ी औरत की तरफ वो किताब दे दी, हाथ बढ़ाया उसकी तरफ। औरत ने खुशी से वो किताब ली और कहा कि बेटे जीते रहो, और चली गई। अब इस बच्चे का आज का मिशन पूरा हो चुका था, इतनी सारी किताबें पढ़ गई जो देनी थी। इसका रुख अब अपने घर की तरफ था, वैसे भी अब शाम का वक्त हुआ जाता था। वो हंसता मुस्कुराता अपने घर वापस आ गया। आगे क्या हुआ होगा अब इसका पता अगले जुमे चलता है। हफ्ते के याम जल्द ही गुजर गए। आज एक बार फिर जुमे का दिन है, यानी अगला जुमा आ गया। बाप बेटा हस्बे मामूल जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में है। नन्हे दाई के वालिद ने जुमे का खुतबा इरशाद फरमाया। नमाज पढ़ाने के बाद हस्बे मामूल हाजरीन से कहा कि आप कोई सवाल करना चाहते हो, कोई बात कहना चाहें तो मैं हाजिर हूँ, आपको इजाज़त है, वो पूछ सकता है। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। लगता था कि आज किसी के पास कोई ख़ास सवाल नहीं। अचानक पिछली सफ़ों पर बैठी हुई ख़वातीन में से एक बूढ़ी खातून खड़ी होती हैं, और वो कदरे बुलंद आवाज़ में कहना शुरू करती हैं, ख़वातीनों हजरात, आप लोगों में से मुझे कोई भी नहीं पहचानता, ना ही आज से पहले मैं कभी इस मस्जिद में आई हूँ, मैं तो गुज़श्ता जुमे तक मुसलमान भी ना हुई थी, बल्कि मैंने इस्लाम कबूल करने के बारे में कभी सोचा भी ना था। चंद माह गुजरे, मेरे खामिन का इंतकाल हो गया। अब सुनिए उसको अल्लाह कहाँ से लाता है। डिप्रेशन आता है ना, फिर रब याद आता है, खुशियाँ आती हैं तो रब भूल जाता है। इसके बाद मैं दुनिया में बिल्कुल तन्हा थी। गुज़श्ता जुमे के रोज़ मौसम गैर मामूली हद तक ठंडा था, वक्फे वक्फे से हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं इस दुनिया और तन्हाई से तंग आ चुकी थी, दुनिया में मेरा कोई भी ना था। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि मैं खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा क्यों ना कर लूँ। जब मेरा खावन नहीं रहा, बच्चे मुझे पूछने नहीं आते, तो मैं इस दुनिया में रह कर क्या करूँगी। बिलाखिर गुज़श्ता जुमे को मैंने खुदकुशी करने का इरादा कर लिया। मैं बाज़ार गई, वहाँ से एक नहायत मजबूत रस्सी खरीदी, सीढ़ी पर चढ़कर छत के गार्डर से रस्सी को बांधा। फिर मैंने रस्सी के एक सिरे पर फंदा बनाया। अगला मरहला यह था कि कुर्सी को अपने करीब करके मुझे इस पर पाँव रखना था, और गले में फंदा डालकर कुर्सी को ठोकर मार देती। इस तरह फंदा मेरे गले में लटक जाता और मेरी ज़िंदगी का खात्मा हो जाता। जो ही मैंने गले में रस्सी डाली, नीचे से घंटी बजने की आवाज़ आई। पहले तो मैंने इस पर कोई तवज्जो ना दी, मगर घंटी मुसलसल बजती रही। मैंने सोचा कोई मेरा मिलने वाला आया होगा, पर कौन हो सकता है, मेरा तो कोई मिलने वाला भी नहीं। मुद्दतें गुजर गई, मुझे तो कोई मिलने भी नहीं आया। मैंने फैसला कर लिया कि मैं घंटी को नज़रअंदाज कर दूँ और ख़ुदकुशी कर लूँ। इधर घंटी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कोई गैर मरई कुवत, गैर मरई कहते हैं जिसको देखा ना जा सके, अनसीन ताकत मुझसे कह रही थी कि देखो दरवाजे पर कौन है। लेकिन एक सवाल बार बार मेरे जहन में उभर आता कि दुनिया में तो मेरा कोई भी नहीं, फिर ये घंटी देने वाला कौन हो सकता है। इसी दौरान किसी ने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं खुदकुशी के प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए मौखर कर देती हूँ, पोस्टपोन कर देती हूँ। चुनाचे मैंने रस्सी को गर्दन से उतारा, कुर्सी का सहारा लेकर खड़ी हुई और आहिस्ता आहिस्ता निचली मंजिल की तरफ चल दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत बच्चे को देखा, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। इसकी आंखें चमक रही थीं। मुझे देखकर इसे यूं लग रहा था कि इसे कोई बड़ी नेमत मिल गई हो। क्या नेमत मिली थी? फल जो कातिल फी सबीलिल्लाह। कैंडी लेने तो नहीं गया, हेलोवीन मनाने जाते या कुछ और करने जाते? मैंने आज तक इस उम्र के बच्चे के चेहरे पर इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट नहीं देखी। मैं बता नहीं सकती कि वो बच्चा मुझे कितना प्यारा लगा। इसके मुंह से निकलने वाले कलेमात नहायत प्यारे और दिलकश थे। जिस अंदाज से इसने मेरे साथ गुफ्तगू की वो नाकाबले फरामोश थी। बात करने का तरीका भी तो सिखाना है ना। तेवरियाँ चढ़ी और ओके और आई डोंट माइंड, ये सोच तो मुसलमान बच्चों की कभी ना थी। स्माइल से बच्चे मोहब्बत लेते थे। इसने मुझसे कहा है, मुअज्जज और मुख्तरम खातून, मैं आज आपके पास इसलिए हाजिर हूँ कि आपको बता दूँ कि अल्लाह ताला आपसे हकीकी मोहब्बत करते हैं, आपका हर लिहाज से ख्याल रखते हैं। इसने जन्नत में जाने का रास्ता नामी किताब मेरे हाथों में देते हुए कहा, इसे इत्मीनान से ज़रूर पढ़िए। वो खूबसूरत और रोशन चेहरे वाला बच्चा जिधर से आया था उधर वापस चला गया, मगर मेरे दिल में शदीद हलचल पैदा कर गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और निचली मंजिल पर ही बैठ गई और इस किताब का एक एक लफ्ज पढ़ने लगी। किताब पढ़ती चली गई, यूं लगता था जैसे ये किताब मेरे लिए और सिर्फ मेरे लिए लिखी गई। मैंने जैसे ही किताब ख़त्म की, मेरे जहन में इनकलाब आ चुका था, मुझे रोशनी मिल गई थी। मैं ऊपर वाली मंजिल में गई, छत से रस्सी खोली और कुर्सी को पीछे हटा दिया। अब मुझे इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत ना रही थी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इसने लोगों से मुखातिब होकर कहा, मैं नहायत सआदतमंद और खुशबख्त हूँ कि मैंने अपने हकीकी रब को पहचान लिया है, मैंने फितरत को पा लिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे हिदायत से नवाजा। किताब के आखिरी हिस्से पर इस मरकज का एड्रेस लिखा हुआ था। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ, खुसूसन इस नन्हे से दाई का जो मेरे पास नहायत ही मुनासिब वक्त पर आया। बस ये चंद लम्हों की बात थी, अगर वो ना आता तो मैं जहन्नुम का ईंधन बनने ही वाली थी। लोग हैरान और शुश्तर होकर बुढ़िया की इस बात को सुन रहे थे। जब इसकी बात ख़त्म हुई तो मस्जिद में बैठे हुए लोगों में शायद ही कोई आंख हो जिसकी आंखों में आंसू ना छलक रहे हों। मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज रही थी। इमाम मस्जिद मिंबर से नीचे उतरे। सामने वाली सफ में इनका नन्ना दाई बेटा बैठा हुआ था। उन्होंने रोते हुए इसे अपने बाजू में लिया और सीने से लगा लिया। वो कह रहे थे कि बेटे, मुझे तुम पर फख्र है, तुम सही मानों में दाई और मुजाहिद हो। मस्जिद में शायद ही कोई शख्स हो जिसकी ये तमन्ना ना हो कि काश इसका बेटा भी इस किस्म का दाई होता। क्या हमने अपनी ये जिम्मेदारियां पूरी की? हम क्यों जिहाद को गाली बनाते हैं? अल्लाह ने तो किताब दे दी और सब कुछ बता दिया, हमने अपने बच्चों को क्या बना दिया? हमने क्या बना दिया? नबी की उम्मत एक भीड़ बनी हुई है। आज हम बच्चों को देते भी हैं तो वो देते हैं कि जिसका सुनना और सुनाना मुमकिन नहीं। बातें तो इतनी हैं शेयर करने को, ऐसा लग रहा है कि दिल फट रहा है मेरा। किसी एक मौके पे ऐसा हुआ कि मुझे किसी ऐसी जगह बुलाया गया कि जहाँ चंद मिनट बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन वहाँ वो नबी की मोहब्बत में अपने मनपसंद काम कर रहे थे। यकीन करें कि जो वहाँ इंतज़ार में और हिकमत के तहत बैठना पड़ा और जो कुछ वहाँ देखा और जो कुछ सुना, कान सुन नहीं सकते और ज़ुबान बयान नहीं कर सकती। ऐसे लगता था कि हम कहाँ खोए हुए लोग हैं। दुआ कीजिए कि आज दर जाग जाए कि हमने खुद भी इस किताब से जुड़ना, थमना और अपनी नस्लों को लेकर चलना।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुदू हिज़रकुम फानफिरू थुबातिन औ इनफिरू जमीअ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا